समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सभी श्रोताओं को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और शेफाली सिंह, हम दोनों का नमस्कार।
Hello Ravi, and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. And dear listeners, on this Friday, let positivity be your guide. Release the worries of the week and welcome the weekend with open arms. Trust me, you have earned the right to savor every moment. And with that, we bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 14th of June 2024. So let's begin with the headlines.
Ji bilkul. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर दो दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे। भारत को इस सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। प्रधानमंत्री यात्रा से अलग G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। श्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम है। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। श्री मोदी ने इटली रवाना होने से पहले कहा कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
Ajit Dobhal has been reappointed as the National Security Advisor and Dr. P.K. Mishra as the Principal Secretary to the Prime Minister with effect from June 10. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointments yesterday. The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions said that the appointments of former IPS Mr. Dobhal and former IAS Mr. Mishra will be co-terminus with the term of the Prime Minister or until further orders, whichever is earlier. Both Mr. Dobhal and Mr. Mishra will be assigned the rank of a cabinet minister in the table of precedence during their term in office. The committee has also approved the appointment of retired IAS officers Amit Khare and Tarun Kapoor as advisers to Prime Minister. The appointments of both officers will be in the rank and scale of secretary to government for a period of 2 years with effect from 10th June or until further orders, whichever is earlier. These appointments will be on a contract basis as per usual terms and conditions as applicable. After the appointment, Mr. Dobhal called on Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi yesterday.
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद दोनों सदनों में उनके अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा।
The government has said that it is keeping a close watch on the market price of wheat. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, in a statement said, suitable measures will be undertaken to prevent hoarding by unscrupulous elements and maintain stability in the market price of wheat. The ministry added that after meeting the requirement for public distribution system and other welfare schemes, which is approximately 184 lakh metric tons, sufficient stock of wheat will be available to undertake market interventions as and when required.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कृपांक प्राप्त करने वाले 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी। इस बारे में शीघ्र ही सूचना जारी की जाएगी और परीक्षार्थियों को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। दोबारा परीक्षा का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया गया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इनकार किया और कहा कि परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।
इंडिया विल ब्रिंग बैक द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ 45 ऑफ इट्स नेशनल्स किल्ड इन अ डेवेस्टेटिंग फायर इन कुवैत बाय अ स्पेशल फ्लाइट टुडे। इन अ स्टेटमेंट इंडियन एम्बेसी इन कुवैत सेड द स्पेशल फ्लाइट विल लैंड इन कोची दिस मॉर्निंग बिफोर हेडिंग फॉर दिल्ली। Most of the deceased are from Kerala, followed by 7 from Tamil Nadu, 3 each from Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, 2 from Odisha, and 1 each from Bihar, Punjab, Karnataka, Maharashtra, West Bengal, Jharkhand and Haryana. Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, reached Kuwait yesterday to coordinate with the Kuwaiti government for the early repatriation of the mortal remains of the deceased, as well as to ensure the well-being of those injured in the tragic fire incident at a labour housing facility in the Mangav area on Wednesday. Out of the 176 Indian workers in the housing facility, 45 have died, while 33 are hospitalised and the rest are reportedly safe. Immediately upon his arrival, the minister visited 5 hospitals where the injured Indians are being treated and interacted with them. According to hospital authorities, all the patients are reportedly safe and will be discharged gradually depending on their medical condition.
मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के कारण उत्तर पश्चिम और उत्तर और पूर्वी भारत में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ आर के जिनामणि ने कहा कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में औसत तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान गोवा और महाराष्ट्र में गरज के साथ बिजली और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसी तरह की मौसम की स्थिति जारी रहेगी।
News from the sports world. In chess, India's Divya Deshmukh won the World Junior Girls Chess Championship after beating Bulgaria's Belislava Krasteva in the final round at the Gift City Club in Gandhinagar, Gujarat. Top-seeded Divya beat Krasteva in the 10th round with just 26 moves to claim her maiden under-20 title. She finished unbeaten in the championship by winning 9 of her games while drawing the other 2.
टी20 क्रिकेट विश्व कप में इस समय अफगानिस्तान का मुकाबला पापुआ न्यूगिनी से और अमेरिका का सामना आयरलैंड से हो रहा है। इससे पहले इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। ओमान की टीम 47 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने केवल 19 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शेफाली सिंह।
न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हु चूज टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट 3 ईयर्स। In 2023, the US mission to India issued more student visas than in 2018, 2019 and 2020 combined. This unprecedented growth reflects the ongoing commitment by the US government to prioritize students and to facilitate their travel, even as the mission met a 400% rise in demand for all other visas between 2021 and 2023. This year, the Consular Team India interviewed 3,900 student visa applicants during its 8th annual Student Visa Day. Indian students are already the largest student group of international graduate students in the United States. Ambassador Eric Garcetti said that every international student on a U.S. campus represents tremendous accomplishment, years of study and hard work that went into preparing for academic excellence. Another news, a tunnel boring machine named Annamalai completed tunneling between Ennavaram Metro and Otteri Metro and achieved a breakthrough as part of the 116.1 km Phase 2 project. The tunnelling began on October 23, 2023 for 925 metres. CMRL Managing Director M.A. Siddiqui and other officials were present during the breakthrough event. The stretch from Ennavaram to Otteri is part of the 9-kilometre underground section on the 45.4 kilometer Corridor 3 from Madhavaram Milk Colony to Sirusedi, Sipkot. A total of 7 tunnel boring machines have been mobilized for tunneling work in the stretch. Phase 2 has 3 corridors covering 116.1 kilometers. A total of 23 tunnel boring machines will be used for tunneling work in the project. News from Bengaluru. ICAR, Indian Institute of Horticultural Research near Bengaluru, has organized a workshop on the All India Coordinated Research Project on Mushrooms for 2 days starting today. The DDG Horticultural Sciences, ICAR, Dr. Sanjay Kumar Singh, inaugurated the workshop and said that India is globally in third position in mushroom production and there is a huge gap in demand and supply in addition to large export potential. He called upon the agri-scientists to make use of farm residue as media for mushroom cultivation through sustainable approach. The director of IIHR in Bengaluru, Dr. T.K. Behra, speaking on the occasion, urged the mushroom scientists to apply recent scientific tools for mushroom improvement. He advised to make use of the vast network of Krishi Vigyan Kendras spread across the country for dissemination of the mushroom technologies to rural India. He noted that this will generate employment and increase the income of rural youth, including women. And now news from Hyderabad. The Telangana state government will be setting up Mahila Shakti canteen services across the state. The government has proposed to set up at least 150 canteens in the next 2 years. Studies have been conducted regarding the functioning of the canteens named Annapurna in Kerala and Didi Ki Rasoi in West Bengal. State Chief Secretary Shanti Kumar directed the Panchayat Raj and Rural Development Commissioner to prepare a detailed action plan regarding the functioning, management and space required for establishing the canteens. The Chief Secretary said at a review meeting held in Hyderabad yesterday that the Chief Minister intended to strengthen women's organizations in the state. Special canteens will be set up in all government offices, collectorates, tourist spots, temples, bus stands and industrial areas with the assistance of women's organizations. She further said a study has been done on the successful performance of similar canteens operating in Kerala and Didi Ki Rasoi in West Bengal. The management of these canteens in the state will be handed over to rural women's groups and special training will be given to these groups on running them. And Ravi, I feel that this is a very nice initiative for empowering the women.
बिल्कुल सशक्तिकरण महिलाओं का बहुत ही ज्यादा जरूरी है.
जी, and now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to you, Ravi.
धन्यवाद शिफाली. नजर डाल लेते हैं राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर. राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में जलसंकट बरकरार है. शहर के करोलबाग, तुगलकाबाद, चाणक्यपुरी, गीता कॉलोनी, गांधीनगर, बवाना और बुराड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी हुई है. इस बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. दिल्ली सरकार जहां इस मसले पर पड़ोसी राज्य हरियाणा पर राजधानी में जलापूर्ति बाधित करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा का आरोप है कि ये संकट आम आदमी सरकार की गलत नीति के कारण है. इस मुद्दे पर दिल्ली के जलमंत्री आतिशी ने कल तिहाड़ कारागृह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार 15 जून से 30 जून तक एक धूल विरोधी अभियान चलाएगी. इसके अलावा हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार की ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण का महाअभियान भी चलाया जाएगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए 35 टीमों का गठन किया गया है जो औद्योगिक कचरे के सही तरीके से निपटान को सुनिश्चित करेंगी. श्री राय ने बताया कि सरकार ई कचरे की रोकथाम के लिए ईको पार्क तेजी से तैयार कर रही है. वहीं पुनर्चक्रण में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार 2000 इको क्लब के द्वारा बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करेगी. भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के एमए कार्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई है। आईआईएमसी ने इस वर्ष मीडिया व्यावसायिक अध्ययन और सामरिक संचार का नया कोर्स शुरू किया है। ये दोनों कोर्स संस्थान के नई दिल्ली परिसर में पढ़ाए जाएंगे और इनमें 40 सीटें उपलब्ध होंगी। बढ़ते हैं मुंबई की ओर। पश्चिमी रेलवे ने मुंबईकरों की ट्रेन यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मुंबई उपनगरीय लोकल के मोटर कोच के साइड पैनल पर पैनोरमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड सफलतापूर्वक स्थापित किया है। गुरुवार को एक विज्ञप्ति में पश्चिम रेलवे के नए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने कहा कि डिस्प्ले पैनल गतिशील हैं और यात्रियों को लोकल ट्रेन के गंतव्य, कोचों की संख्या और ये धीमी या तेज लोकल है या नहीं, इसकी स्पष्ट और तत्काल पहचान प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर अधिक सुविधाजनक और सूचित यात्रा सुनिश्चित होगी। पश्चिम रेलवे के अनुसार ये अभिनव सुविधा जल्द ही मुंबई उपनगरीय खंड की अन्य लोकल ट्रेनों में भी लागू की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, शेफाली चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग आज बैठक करेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी राज्य के नोडल अधिकारी और सीएपीएफ नोडल अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में होने वाली बैठक में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में 10 जुलाई को रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा और मानिकतला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शेफाली के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो शेफाली, सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम।
जी,
तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के साथ आंधी आने की संभावना है और कभी कभी तेज सतही हवाओं के साथ लू की स्थिति भी बन सकती है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शेफाली,
यस, लेट्स हैव अ लुक एट द वेदर ऑफ सदर्न इंडिया। Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature is 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is 21 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन शेफाली, उससे पहले हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदान दिवस है, जो हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 जून को मनाया जाता है। एंड यू नो शेफाली, इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पॉलिसी। इन द ईयर 1997 द ऑर्गेनाइजेशन हैड सेट द that 124 major countries of the world should promote voluntary blood donation in their countries. उद्देश्य यही था कि रक्त की जरूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
जी।
और अब बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो शुरुआत आप ही से करते हैं।
जी, बट बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल आर लिसनर्स दैट रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन, मेडिकल साइंस सेज दैट एनी हेल्दी पर्सन हुज एज इज बिटवीन 16 टू 60 ईयर्स, हु वेज मोर देन 45 केजी एंड हु डज नॉट सफर फ्रॉम डिजीजेज लाइक एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कैन डोनेट ब्लड। सो आई वुड अर्ज ऑल आर लिसनर्स टू प्लीज गो अहेड एंड डोनेट ब्लड इफ यू सूट द क्राइटेरिया।
बिल्कुल। और अब बता देते हैं अपने श्रोताओं को 14 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
यस, सो ऑन 14 जून इन 1886 एन ऑर्फनेज फॉर लिटिल गर्ल्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया।
1901 में आज ही के दिन पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
इन 1958 डॉक्टर सी वी रमन रिसीव्ड द लेनिन पीस प्राइज इन क्रेमलिन। And in 1985, M.C. Sharma was appointed as the Narcotics Commissioner of India. He headed this office till 10th December 1985. In 1992, Teen Bigha activists were lathi charged in the Teen Bigha corridor in Cooch Behar. In 1995, RBI announced the introduction of appointing ombudsmen to redress grievances and disputes of bank customers. And in 1998, S. Vijayalakshmi won National Women's HS title in Mumbai.
1999 में आज के दिन थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए. सन 2001 में आज के दिन जांच आयोग ने दीपेंद्र को ही शाही परिवार का हत्यारा बताया. नेपाल की बात है ये शिवाली. और 2004 में आज के दिन पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ. सन 2005 में माइकल जैक्सन बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार से जुड़े 10 मामलों में बरी हुए. और 2007 में आज के दिन चीन के गोबी रेगिस्तान में पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले. सन 2008 में केंद्र सरकार ने अलग गोरखालैंड राज्य के निर्माण की संभावना को खारिज किया. और 2008 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 96 मीट्रिक टन की सोने की खान का पता चला. और 2008 में चीन के उत्तरी प्रांत शांगझी में एक कोयला खदान में विस्फोट में 27 लोग घायल हुए. और अब समय हो गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में जानकारी देने का अपने श्रोताओं को. तो पुण्यतिथियों में आज सबसे पहला नाम है 1954 के पद्म भूषण विजेता कार्य माणिवक्कम श्रीनिवास कृष्णन का, जिनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1898 को, लेकिन निधन हुआ 14 जून 1961 को. आप प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे. मद्रास विश्वविद्यालय ने इनको डीएससी की उपाधि प्रदान की थी. श्रीनिवास कृष्णन सन 1945-1946 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष चुने गए और भौतिकी की प्रत्येक दिशा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था.
टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फकीर मोहन सेनापति, एन इंडियन राइटर, पोएट, फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर. सेनापति इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ उड़िया नेशनलिज्म एंड मॉडर्न उड़िया लिटरेचर. हिज शॉर्ट स्टोरी रेबती, विच केम आउट इन 1898, इज वाइडली रिकग्नाइज एज द फर्स्ट उड़िया शॉर्ट स्टोरी. इट इज द स्टोरी ऑफ अ यंग इनोसेंट गर्ल हुज डिजायर फॉर एजुकेशन इज प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंजर्वेटिव सोसाइटी इन अ बैकवर्ड ओडिशा विलेज विच इज हिट बाय द किलर एपिडेमिक कॉलेरा. His other stories are Patent Medicine, Daka Munshi, Adharma Bitta.
और अब बात कर लेते हैं पद्म भूषण, तानसेन सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता उस्ताद असद अली खां के बारे में. आपका जन्म हुआ था 1937 में अलवर में और आपने इस दुनिया को अलविदा कहा 14 जून 2011 दिल्ली में. उस्ताद असद अली खां को रुद्रवीणा वादक के नाम से आज भी पूरे भारत में जाना जाता है. उस्ताद असद अली खां को वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. श्री असद अली खां आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे. उस्ताद असद अली खां का जन्म 1937 में अलवर राजस्थान में हुआ. संगीत की प्रारंभिक शिक्षा रामपुर दरबारी के संगीतज्ञ अपने पिता उस्ताद सादिक अली खां से ग्रहण की. वे संगीत की प्राचीनतम शैली ध्रुपद की खंडार बानी विधा के वर्तमान में एकमात्र संरक्षक रहे. उस्ताद असद अली खां ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका, अफगानिस्तान, इटली और कई अन्य यूरोपीय देशों सहित कई देशों में प्रदर्शन किया और संयुक्त राज्य अमरीका में संगीत के पाठ्यक्रमों का आयोजन भी किया था. और यही नहीं शेफाली, उस्ताद असद अली खां ने आकाशवाणी में काम किया. संगीत और ललित कला में 17 साल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में सितार सिखाया और छात्रों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर प्रशिक्षित करना भी जारी रखा था.
Today is the death anniversary of Henry Mancini, an Italian-American composer, conductor, arranger, pianist and flutist. Often cited as one of the greatest composers in the history of film, he won 4 Academy Awards, a Golden Globe and 20 Grammy Awards, plus a posthumous Grammy Lifetime Achievement Award in 1995. Henry Mancini included the music for the Pink Panther film series or the Pink Panther theme and also gave the music for Moon River from Breakfast at Tiffany's. So let's listen to the Pink Panther theme music.
There's such a lot of world to see.
और अब जिनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं हम शेफ अली, उनका प्रशंसक होने के नाते उनको लेकर एक गीत याद आ रहा है कि तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम तेरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। और ये भी कहने का मन कर रहा है शेफ अली कि तुम क्या गए शहर सूना कर गए, दर्द का आकार दूना कर गए। जी हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तेजी से अपना मुकाम बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आपका जन्म हुआ 21 जनवरी 1986 पटना बिहार में और आपने इस दुनिया से विदा ली 14 जून 2020 मुंबई महाराष्ट्र में। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय फिल्म अभिनेता, थिएटर और टीवी कलाकार थे। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में काम किया, लेकिन उनको पहचान धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव मिलना शुरू हुए और उनकी पहली फिल्म काय पोछे थी, जिसमें उनके अभिनय की बहुत तारीफ भी हुई। और काय पोछे के बाद सुशांत सिंह राजपूत शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे। फिल्म सफल रही और सुशांत का फिल्मी कैरियर भी परवान चढ़ गया। सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 को दिन में मुंबई के बांद्रा में अपने घर में मृत पाया गया। प्राथमिक सूचना के अनुसार उनका निधन आत्महत्या के कारण हुआ और बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से अवसाद में थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं।
रूठे खाबों को मना लेंगे, छोटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, हाँ मांझा।
Sushant was indeed a very interesting personality and had a gamut of talents. So today is the birthday of Pritham Chakrabarty, an Indian composer, instrumentalist, guitarist, music producer and singer. He debuted as a composer in the 2001 Hindi film Tere Liye. Pritham has composed and covered some popular songs in a variety of genres, including rock, for instance in the movie Life in a Metro, Sufi in Once Upon a Time in Mumbai, and even ghazals in Barfi. His musical style is mainly characterized as a delicate fusion of Indian classical music with contemporary undertones. So let's listen to my favorite, Phir Le Aaya Dil, a reprise from the movie Barfi.
Phir Le Aaya Dil Majboor Kya Kijiye Rasna Aaya Rehna Dur।
और अब बात है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक की आसिफ के बारे में, जिनका पूरा नाम करीम आसिफ है और जन्म हुआ आपका 14 जून 1922 और निधन 9 मार्च 1971 को। और करीम आसिफ उर्फ के आसिफ ही वो शख्स थे जिन्होंने 1960 में भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक क्लासिक फिल्म मुगले आजम बनाई थी।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया छुप छुप आए भरना क्या, जब प्यार किया।
I would also like to tell our listeners that today is the birthday of Nikhat Zareen, an Indian boxer and a 2-time world champion. As we all know, Zareen has been in news lately for all the good reasons. Zareen won gold medals at the 2022 Istanbul and 2023 New Delhi IBA Women's World Boxing Championships. She also won gold medal at the Birmingham 2022 Commonwealth Games. Nikhat Zareen secured a Paris 2024 Olympics quota with a bronze medal at the Asian Games last year.
और चलते चलते जन्म जयंतियों में बात अपने जमाने के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता भारत भूषण के बारे में, जिनकी आज जन्म जयंती है। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 मेरठ में वैश्य जमींदार परिवार में हुआ और 1951 तक अभिनेता के रूप में उनकी खास पहचान नहीं बन पाई, लेकिन भारत भूषण के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा से चमक गया।
तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके।
तो ये गाना था, फिल्म प्यार का मौसम था, जो पिक्चराइज हुआ था भारत भूषण पर। और चलते चलते अब आज का विचार कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शेफ अली सिंह को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने के लिए।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।